परमेश्वर की स्तुति हो। आज का जो संदेश है इसका टाइटल इस प्रकार से है कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी हैं या नहीं, क्या हम परमेश्वर की नजरों में धनी हैं या नहीं। हम सब काफी मसरूफ जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने कामों में काफी बिजी काफी मसरूफ रहते हैं, अपने अपने काम में अपने अपने बिजनेसेस में हर दिन हम कोई ना कोई हम निर्णय अवश्य लेते हैं, चॉइसेस डिसीजंस लेते हैं जो हमें लगता है कि वे सब सही है। जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द इस दुनिया में रहते हुए, जब हम कई चीजों को देखते हैं तो जाहिर है उसका असर हम पर जरूर होता है। हमारे जो दिन भर की जो जिंदगी की जो चीजें हैं, जो चीजें जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, वो लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमें ट्रैवल करना हो या हमें कहां दूसरी जगह जाना हो तो आजकल कारें हैं, हवाई जहाजें हैं या लग्जरी शिप्स भी हैं। अगर हमें अच्छा खाना खाना है तो आजकल फाइव स्टार होटल्स हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। ऐश आराम की जिंदगी अगर जीना है तो बड़े मकान हैं, बड़े बंगले हैं, फ्लैट्स हैं रहने के लिए। अगर हमें पैसे बचाना है तो बैंकों में हम पैसे को रख सकते हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें भी हम अपने पैसा रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर किसी को अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, ऐश आराम की जिंदगी अगर चाहिए तो उसे अपनी जिंदगी को वो बेहतर बना सकता है। लेकिन जो मूल्य जो सवाल है, जो इंपॉर्टेंस जो सवाल है, वो क्या और किस तरह से परमेश्वर इन चीजों को देखता है, इन चीजों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से लूका 12:13-21। लूका 12:13-21। फिर भीड़ में से एक ने उसे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उससे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखराई और तोड़ उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यीशु मसीह इन दिनों में काफी मशहूर, काफी लोकप्रिय शिक्षक हुआ करता था। लोग उसके पास आते थे अपने समस्या का निदान करने के लिए। बड़े बड़े चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु था, तो स्वाभाविक था कि एक बड़ी भीड़ जब जब यीशु मसीह निकलता था उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हमेशा रहती। लोग हमेशा कुछ अपेक्षा हमेशा यीशु मसीह से करते थे कि क्या हमें यीशु मसीह से क्या मिलेगा। तो ये जो मनुष्य है वो भी एक समस्या लेकर यीशु मसीह के पास आया। इसका जो समस्या था वो उसका जो भाई अपना पिता का जो संपत्ति है वो नहीं दे रहा था अपने भाई को। तो भाई यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहने लगे कि मेरे भाई को कहे कि पिता की जो संपत्ति है वो मुझे बांट दे। देखो यीशु मसीह का क्या उत्तर है, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है। ये जो जवाब यीशु मसीह ने दिया था इसका ये अर्थ नहीं कि यीशु मसीह इस मनुष्य को कोई इसका जो समस्या है इसका निदान नहीं करना चाहता था, परंतु यीशु मसीह का यह उद्देश्य था कि यीशु मसीह का उद्देश्य यह था कि ये जो मनुष्य है जो उसके पास ये समस्या लेकर आया है उसका जो जड़ है वो उसे पता चले। जो समस्या है उसका जड़ जो है ये उस मनुष्य को पता चले और वो यीशु मसीह इस मनुष्य को ये जानने के लिए मदद कर रहा था कि उस जड़ को जाने और उस जड़ जो है वो है लालच। 15वें आयत में हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो हमें एक गलत फहमी में नहीं रहना है। आजकल की जिंदगी में हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता तो हम खुश रहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मकान होता तो हम खुश रहते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा सोना होता तो हम खुश रहते हैं। अगर हमारे पास जो अभी का जो जॉब है उससे थोड़ा अच्छा जॉब हमारे पास होता तो हम खुश रहते हैं। लेकिन ये सब जो बातें हैं ये सब हम गलत फहमी में रहते हैं। ये प्रभु हमारा ध्यान इन सब चीजों पर हमें देने के लिए कहता है कि ये सब चीजें जो है ये हमें गलत फहमी में हमें रहने के लिए मजबूर करते हैं। 16 आयत से 16 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बरखियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। इस व्यक्ति के पास काफी सारा पैसा आया, कहने का मतलब उसका जॉब उससे अच्छा मिला, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, बहुत सारा पैसा उसके पास आ रहा है। हम भी हमारा ध्यान भी यही इसी में लगा रहता है कि हम हमारे जो कोशिश है ध्यान है हमारी जो ताकत है वो इन चीजों पे लगे रहते हैं कि किस तरह से हमने ज्यादा हम पैसा कमा लें या किस तरह से हमारी जो जिंदगी है उसे हम बेहतर बना लें या किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा को हम बचा कर रख लें ताकि जो आने वाली जिंदगी है वो हमें सुख और चैन से हम उसे जी सकते हैं। ऐश आराम की जिंदगी हम किस तरह से जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे वस्तुएं हैं संपत्ति है वो किस तरह से हमें हम बटोर सकते हैं। तो इन चीजों के पीछे हमारा पूरा ध्यान लगा रहता है, हमारी कोशिश हमारी हमारे जो ताकत है इन चीजों को बटोरने के पीछे लगा रहता है। तो हमें हम ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम के पीछे और ओवर टाइम करते हैं। अगर शुक्रवार का इबादत का अगर समय है या दिन है तो हमारे लिए एक वजह होती है कि हम नहीं आ सकते इबादत में क्योंकि हमारे पास काम है करने के लिए, बहुत सारा काम है इसलिए हम इबादत को नहीं आ सकते हैं। अगर हमें बाइबल पढ़ने के लिए कोई कहता है तो उसके लिए भी टाइम नहीं क्योंकि दूसरे जो किताब है वो पढ़ने के लिए हमें फुर्सत ज्यादा चाहिए क्योंकि उसे हमें इल्म मिलेगा ताकि हमें अच्छा जॉब मिल सकता है या फिर जो चीजें हैं उसे हम बटोर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि हमें दुआ करनी है तो दुआ के लिए भी हमारे लिए फुर्सत नहीं टाइम नहीं है क्योंकि हमें दूसरों के साथ फजूल बातों में हमें वक्त गुजारना है या हम सोचते हैं कि दुआ में क्या रहता है, बेहतर है कि हम किसी ऐसे मनुष्य से बातें करें जिससे बात करके हमें कुछ फायदा हो या फिर हमारा जो बिजनेस है वो बढ़े। अगर हमें किसी ने कहा कि इस मनुष्य के बारे में किसी को कहना है तो हम डरते हैं कि सामने वाला को गुस्सा आए या ऐसे कहने से जो उसकी उसका जो रिश्ता है हमारे साथ वो बिगड़ जाए, या हम उस आदमी का जो रिश्ता है वो खो देंगे। फिर से हम पढ़ेंगे 16 से 20 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बरखा या तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? भले दुनिया की नजरों में ये जो मनुष्य है वो काफी लोकप्रिय होगा, काफी लोग शायद उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए करते हैं कि काफी सक्सेसफुल इंसान है, कामयाब इंसान है, उसकी अकल की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके बारे में, कामयाबी के बारे में कहते हैं। और काफी लोग शायद उसे डरते भी होंगे क्योंकि उसके पास पैसा और कामयाबी है। ये दुनिया कहती है इस मनुष्य के बारे में, लेकिन क्या हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है इस मनुष्य के बारे में? 20वीं आयत में परमेश्वर इसी मनुष्य के बारे में कहता है कि हे मूर्ख। देखिए 21वां वचन में कहते हैं ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं या परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आखिर जो मूल की जो बात है, जो सबसे बड़ा अहमियत रखने वाला जो सवाल है कि क्या मैं परमेश्वर के प्रति धनी है, क्या मैं परमेश्वर के नजरों में धनी है या परमेश्वर के नजरों में धनवान हूं? मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त, कहीं भी और किसी भी उम्र में। अहमियत रखने वाला सवाल यह है कि क्या मैं इन बातों को जानता हूं। चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें जो जिंदगी में क्या है, क्या ये काफी है कि मैं इस दुनिया में धनी हूं, और या ये काफी है कि मैं परमेश्वर के प्रति धनी हूं? हम सब जो वस्तुएं हैं, संपत्ति बटोरने के पीछे हम लगे रहते हैं और नहीं जानते कि इन सब संपत्ति, इन सब चीजों, इन सब वस्तुओं का हमारे उपरांत क्या होगा। हम हमेशा अपनी जिंदगी में यही सोचते कि ये मेरी, ये मेरा मकान है, ये मेरा सोना है, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर अचानक परमेश्वर ने हमारी जो जान है वो हमसे छीन ली तो क्या बचा रहेगा? कुछ भी नहीं। आज का जो संदेश है ये संपत्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जिंदगी के प्रति गलत रवैया के प्रति है, जो गलत रवैया ये सोचता है कि संपत्ति सब कुछ है या वस्तुएं सब कुछ है। जिंदगी के मायने वस्तु ही है, जिंदगी के मायने संपत्ति ही है। हकीकत में अगर हमारे पास संपत्ति या वस्तुएं होती है तो यीशु ऐश आराम की जो चीजें हैं वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर हम नहीं होते हैं, हम निर्भर हमारे वस्तुओं, हमारा जो पैसा है, हमारा जो दौलत है, हमारे जो रिश्ते हैं उस पर हम होने लगते हैं। ये जो रवैया है, जो गलत रवैया है, उसे बदलना जरूरी है। हम मरकुस आठ 36 और 47 पढ़ेंगे। मरकुस 8:36 में यह लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? पहला तिमोथी उसका 6 चैप्टर छ से दस पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाएं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से हम परमेश्वर की नजरों में धनी रह सकते हैं। सवाल हम अपने आप को हम सवाल कर सकते हैं कि हमने परमेश्वर को हमेशा प्रथम रखा है हमारी जिंदगी में, या फिर हमारी जिंदगी में प्रथम जो है वो कुछ लोग हैं या हमारा काम है। परमेश्वर से प्रथम हम अपने रिश्तेदारों को रखते हैं। क्या हमें परमेश्वर के लिए समय है या परमेश्वर के चीजों के लिए समय है? क्या हम बाइबल रेगुलरली पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं? कि हम प्रार्थना हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं, या बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखते हैं? क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर का डर है? क्या हम परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं या नहीं मानते? क्या हम दसवां भाग देने में हम परमेश्वर के आदेश को मानते हैं? क्या हम इस दुनिया के साथ चलते हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या हम हमेशा सच बोलते हैं या कभी कभी हम झूठ भी बोल लेते हैं? कि हम चोरी करते हैं, चोरी में हम भागीदारी बनते हैं? कि हम चीजें जो हमारे नहीं है, दूसरों की चीजें, कि हम दूसरों की चीजें हम लेते हैं? कि हम परमेश्वर के बारे में हम मजाक उड़ाते हैं, या हम परमेश्वर की जो बातें हैं उसे गंभीरता से नहीं लेते? ये जो चीजें हैं, ये जो सवाल है, वो हम अपने आप से हम पूछ सकते हैं, और हमें पता चलेगा कि क्या हम परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, क्या हम उनके नजरों में क्या हम धनी हैं या नहीं। अगर हमें लगता है कि हम परमेश्वर के प्रति धनी नहीं है, तो आज परमेश्वर हमें वक्त देता है कि हम तौबा करें, परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि मौत और हमारी जान कभी भी परमेश्वर ले सकता है। तो आखिरकार हमारे संपत्ति, हमारे जो ऐश और आराम संपत्ति हम बटोरते हैं, तो किस काम का? तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हमें क्षमा करें। हमारा जो जिंदगी देखने का रवैया जो है, जो जिंदगी देखने का जो नजर है, उसे बदल दें। जिंदगी के जो जरूरत चीजें जो हैं, वो आप देंगे। हमारा जो भरोसा है आप पर, वो और बढ़ाएं, विश्वास और बढ़ाएं। जो जो हमें चाहिए, रोज की रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, इन चीजों से हमें संतुष्ट होने के लिए हमें मदद करें प्रभु। हे प्रभु, हमें ज्ञान देना कि जो चीजें की अहमियत आपकी नजर में क्या है, हमेशा आपके पीछे और मजबूती से चलाना। प्रार्थना करने के लिए वक्त के लिए हमें मदद करें, बाइबल पढ़ने के लिए हमें मदद करें, चर्च में रोजाना आने के लिए, शुक्रवार का जो दिन है वो आपके लिए रखने के लिए हमें मदद करें, विश्वास बढ़ाएं प्रभु, आशीष हमें दें, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।